आर्यांश इस वक्त अपनी फैमिली के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। जब उन्हें ये पता चला कि आर्यांश दीवा से मिला था, तब उनके दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद जाग गई थी कि वो दोनों फिर से साथ आ सकते हैं। लेकिन आर्यांश ने उनके सामने साफ कर दिया था कि अब वो और दीवा कभी साथ नहीं हो सकते हैं। साथ ही आर्यांश वापस मुंबई लौटने के लिए भी तैयार नहीं था। आर्यांश का ये फैसला सुनकर उन सबका दिल टूट गया था। उनमें से कोई नहीं जानता था कि पृथ्वी भी उनकी बातें सुन रहे हैं। जैसे ही उन्होंने आर्यांश का फैसला सुना, गुस्से में उनकी मुट्ठियाँ कस गई थीं। आई होप कि आप मॉम को लेने कल तक आ जाएंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना कहकर आर्यांश ने कॉल कट कर दिया था। उसने उनमें से किसी को मौका तक नहीं दिया था कि वो उसके फैसले के खिलाफ कुछ कह भी सकें। जैसे ही आर्यांश का कॉल कट हुआ, पृथ्वी तेज आवाज में बोले, मैंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि इस खानदान का इकलौता वारिस इतना नालायक निकलेगा। पृथ्वी के शब्द सुनते ही वो सब चौंक गए थे। मनीष और श्रेष्ठ की उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वर्तिका ने धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी दादू, पर भाई नालायक तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने खुद को साबित किया है। उन्हीं की वजह से कपूर इंटरनेशनल आज इस पोजीशन पर है। सब कुछ पहले से तैयार किया हुआ मिला था, उसने बस उसे संभाल कर रखा था। जब कुछ करने की बारी आई, तब दूर भाग गया और अब इस तरह हर जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रहा है, पृथ्वी गुस्से में बोले। लेकिन आप ही ने तो उन्हें निकाला था, वर्तिका ने हिम्मत करके कहा। मैंने उसे इसलिए नहीं निकाला था कि वो मुंह छुपाकर कहीं जाकर बैठ जाए, उसे खुद को साबित करने के लिए, उसकी गलतियां सुधारने के लिए दूर भेजा था। पर लगता है एक बार फिर सब मुझे ही संभालना होगा, पृथ्वी ने दांत पीसते हुए कहा और फिर वहां से अपने कमरे में जाने लगे। पृथ्वी की बातें सुनकर वर्तिका के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए थे। वो जल्दी से मनीष की तरफ देखकर बोली, दादू को भाई के बारे में पता चल गया है, मुझे डर लग रहा है पापा, कहीं दादू उनकी लाइफ और मुश्किल न बना दे। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। देखा जाए तो आर्यांश ने एक भी सही फैसला नहीं लिया था। वो इस तरह दीवा और हम सबको छोड़कर दूर कैसे जा सकता है, मनीष ने निराशा भरे स्वर में कहा। मनीष भी वहां से चले गए थे। वर्तिका ने श्रेष्ठ की तरफ देखा। श्रेष्ठ ने उसके कंधे को सहलाकर उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने को कहा। वर्तिका की घबराहट वो समझ सकता था। पृथ्वी का स्वभाव काफी सख्त था। पिछली बार भी उन्होंने आर्यांश ने उसका सब कुछ छीनकर उसे बाहर निकाल दिया था। चिंता मत करो, अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहा, श्रेष्ठ ने वर्तिका को समझाया। फिर भी मुझे डर लग रहा है, वर्तिका ने गहरी सांस लेकर कहा। एक बात अच्छे से याद रखो कि तुम्हारे भाई के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। उस वक्त भी अगर उसने वो पोजीशन छोड़ी क्योंकि वो गिल्ट में था, वरना अगर आर्यांश अपनी जिद पर अड़ जाता तो तुम्हारे दादू भी कुछ नहीं कर पाते। वो अपने इरादों का कितना पक्का है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दीवा से प्यार होने के बावजूद भी उसके दिल में बदला लेने की चाह थी, तो वो उसने वही किया। देखना, जिस दिन आर्यांश खुद को माफ कर देगा उस दिन दीवा को कोई उससे छीन नहीं पाएगा, श्रेष्ठ ने काफी कॉन्फिडेंट होकर कहा। वैसे भी वो आर्यांश को काफी अच्छे से जानता था। वर्तिका घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ के तसल्ली देने पर उसने हल्के से सिर हिला दिया था। वहीं दूसरी तरफ दीवा को पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई। वो कश्मकश में करवटें बदलती रही और ये सोचती रही कि अगर आर्यांश ने दूर रहकर उसका ख्याल रखा था तो वो कभी उसके सामने क्यों नहीं आया। दीवा को सुबह उठने में लेट हो गई थी और उसे हॉस्पिटल के लिए भी निकलना था। जब उसने घड़ी में टाइम देखा तो उसने अपना सिर पकड़ लिया था। मैंने सोचा था सुबह जल्दी उठकर शिव को किसी अच्छी एक्टिविटी स्कूल में डाल दूंगी, लेकिन यहाँ तो ब्रेकफास्ट तक बनाने का टाइम नहीं बचा है, दीवा ने गहरी सांस लेकर कहा। वो अपनी इस नई जिंदगी में बिल्कुल भी सेटल नहीं कर पा रही थी। दीवा इस उधेड़बुन में थी कि वो जल्दबाजी में क्या बनाए। तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। दीवा को यही लगा कि मेडिकल स्टाफ में से कोई होगा जो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए बुला रहा होगा। जब से यहाँ आई हूँ लेट ही हो रहा है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, दीवा ने मुंह बनाकर कहा और जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो सामने उस बिल्डिंग की मालकिन खड़ी हुई थी। वो दीवा को देखकर मुस्कुराई और उसके हाथ में कैसरोल देते हुए बोली, ये हमारे पेलिंग का पारंपरिक भोजन है मैडम जी, कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, सुबह जल्दी उठकर बनाया था, सोचा सबको दे दूं। इसकी क्या जरूरत थी आंटी, और आप रोजाना कुछ ना कुछ देकर जाती ही रहती हैं, दीवा ने हिचकिचाते हुए कहा। उसे वो खाना लेते हुए काफी अजीब लग रहा था। दीवा के चेहरे की हिचकिचाहट वो समझ सकती थी। उन्होंने दीवा के हाथ में जबरदस्ती डिब्बा पकड़ाया और बोली, गांवों में लोग इसी तरह घुल मिलकर रहते हैं, जब भी कुछ खास बनता है आसपास के पड़ोसियों में बांटा जाता है, काफी सारा है, चिंता मत कीजिए, और भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी ना बातें करने बैठ गई, आपको काम होगा अस्पताल भी जाना होगा। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने हंसकर हाथ हिलाया और फिर वहां से चली गई थी। दीवा अभी भी उलझन में खड़ी हुई थी। जब भी वो इस परेशानी में होती कि उसे खाना बनाने में देर हो जाएगी या वो काफी थक चुकी है, तब न जाने कहां से उसके पास अपने आप खाना पहुंच जाता था। एक बार सुमन ने आर्यांश के हाथों खाना भेजा था तो दो से तीन बार उनकी मकान मालकिन उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आई थी। शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ, फिलहाल मुझे इस बात के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि मेरा टाइम बच गया, दीवा खुद से बड़बड़ाकर बोली और जल्दी से अंदर आ गई थी। उसने शिव के साथ नाश्ता किया और कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच चुकी थी। बाकी का स्टाफ उससे पहले ही आ चुका था। दीवा ने शिव को वैशाली के पास छोड़ा और कहा, जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं एक्टिविटी स्कूल में शिव का एडमिशन करवा दूंगी। मुझे पता चला है कि यहाँ इस तरह का कोई स्कूल है, मेरी वजह से तुम सबका काम भी डिस्टर्ब होता है। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी हम सबको क्यूटी बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से ये इतना शांत और अच्छा बच्चा है कि किसी को तंग नहीं करता, वैशाली ने मुस्कुराकर कहा और प्यार से शिव के गाल पर हाथ रखा। सच में तुम लोग बहुत हेल्प कर रहे हो, सिर्फ तुम ही नहीं हमारी मकान मालकिन भी बहुत अच्छी हैं। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देर हो रही है वो पता नहीं कैसे खुद ही खाना लेकर पहुंच जाती हैं। सुबह उन्होंने जो डिश दी थी वो तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। उन्होंने बताया था कि जब भी वो कुछ खास बनाती हैं तब सबको देती हैं। दीवा काफी हल्के लहजे में सब कुछ बता रही थी, जबकि उसकी बातें सुनकर वैशाली के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए थे। कौन सी डिश और वो कब सबको खाना देने जाती हैं? उन्होंने बस हमारे आने पर हाउस वार्मिंग पार्टी दी थी, उसके अलावा आज तक कुछ नहीं किया, वैशाली ने बताया। दीवा के चेहरे पर भी हैरानी के भाव उभर आए थे। वो भौहें से कोड़कर सोचने की कोशिश कर रही थी। वैशाली ने महसूस किया कि उसकी बातों की वजह से दीवा उलझन में आ गई है। वैशाली हल्का सा हंसी और उसे आश्वासन देते हुए बोली, लगता है आंटी को बच्चे बहुत पसंद है, शिव की वजह से वो कुछ ना कुछ देकर जाती होंगी। मैंने सुना है कि वो गांव के सबसे अमीर लोगों में से हैं और उनके कोई बच्चा भी नहीं है। हाँ हो सकता है, मैं शायद ज्यादा ही सोच रही हूँ, बाद में मिलते हैं, दीवा ने जवाब में कहा और फिर वहां से जाने लगी।
जैसे ही दीवा दूसरी तरफ पलटे उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। वो खुद से बड़बड़ाकर बोली, आई होप कि वैशाली की बात सच हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा आर्यांश कपूर। दीवा को ये समझते देर नहीं लगी कि उसके लिए खाना कौन भेज सकता है। दोपहर तक वो कामों में लगी रही और फिर लंच ब्रेक के टाइम दीवा शिव को लेकर रेस्टोरेंट पहुंच गई थी। उसे आर्यान से बात भी करनी थी और साथ ही उसे एक्टिविटी स्कूल के बारे में भी पूछना था। इस बार दीवा का ऑर्डर लेने कोई दूसरा वेटर आया तो दीवा ने सीधे सीधे कहा, मुझे आर्यांश से बात करनी है, क्या आप उसे भेज सकते हैं? उसका ऑर्डर लेने आया वेटर एक पल के लिए झिझक गया था, फिर उसने हल्के से सिर हिलाया और आर्यांश को वहां भेज दिया था। जैसे ही आर्यांश वहां पहुंचा, दीवा उसकी तरफ खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। आर्यांश ने उसे अनदेखा किया और शिव की तरफ देखा। शिव आर्यांश को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। रोज रोज बाहर का खाना खाना अच्छा नहीं होता है, आर्यांश ने नोटपैड की तरफ देखकर कहा। रोज रोज किसी का एहसान लेना भी कहाँ अच्छा होता है, दीवा ने उसे घूरते हुए कहा। तो आर्यांश ने तुरंत दीवा की तरफ देखा। जैसे ही उनकी नजरें आपस में जा टकराईं, दीवा ने सिर हिलाकर कहा, सुबह ब्रेकफास्ट भिजवाने वाले तुम थे, उस रात भी सुमन माँ नहीं बल्कि तुम खाना बनाकर लेकर आए थे, परसों रात का डिनर भी मेरी लैंडलेडी ने तुम्हारे कहने पर दिया था, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना मेहरबान रहने वाला हूँ? कल रात तुमने कहा था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं तो दवाइयों तक का खर्चा नहीं उठा पाता, तो दो अलग लोगों का खर्चा कैसे उठाऊंगा? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, आर्यांश ने भौहें उठाकर कहा। दीवा के चेहरे पर कड़वाहट भरी हंसी उभर आई थी। आर्यांश उसके सामने कभी सच एक्सेप्ट नहीं करने वाला था। एक तरफ तो तुम मुझे खुद से दूर रहने के लिए कहते हो और दूसरी तरफ मुझ पर नजर बनाए हुए हो। पहले खुद के इमोशंस को कंट्रोल करो आर्यांश कपूर, फिर दूसरों को समझाना। आखिरी बार कह रही हूं, मेरे ऊपर ये सब एहसान करने की जरूरत नहीं है। क्या पता कल को चार लोगों की भीड़ के सामने अपने इस एहसान का बदला न जाने किस तरह लोगे, दीवा के मुंह से निकला। आर्यांश के चेहरे के भाव तुरंत गहरे हो गए थे। वो बेवकूफ नहीं था जो ये नहीं समझ सकता था कि दीवा किस बात को लेकर ताना मार रही है, जबकि दीवा का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। अनजाने में उसने उस दिन का जिक्र छेड़ दिया था जब पृथ्वी की बर्थडे पार्टी में आर्यांश के सबके सामने दीवा को ठुकरा दिया था। आर्यांश के गुस्से से मुट्ठियां बंद गई थीं और वो तुरंत दूसरी तरफ पलट गया था। ऐसा नहीं था कि आर्यांश को दीवा पर गुस्सा आ रहा था, बल्कि वो गुस्सा उसके खुद के ऊपर था। उसकी आंखें सर्द होने लगीं और वो दीवा पर किसी बात का गुस्सा नहीं करना चाहता था। जैसे ही आर्यांश दूसरी तरफ पलटा, दीवा को भी अपने शब्दों का एहसास हुआ। आर्यांश उसका ऑर्डर लिए बिना ही जाने लगा। रुको, तुमने अभी मेरा ऑर्डर नहीं लिया है, दीवा ने पीछे से तेज आवाज में कहा। मैं दूसरे वेटर को भेजता हूँ मैम, आर्यांश ने बिना पलटे कहा और तुरंत वहां से किचन की तरफ चला गया था। आर्यांश ने तुरंत किसी और को वहां भेज दिया था, जबकि दीवा की निगाहें उसी तरफ टिकी हुई थीं जहां आर्यांश गया हुआ था। उसे अब खुद के शब्दों पर अफसोस हो रहा था। आर्यांश भी अपने अफसोस में डूबा था। उसने मन ही मन कहा, मुझे तुम्हारी परवाह है इसीलिए खाना भिजवाया था, मुझे नहीं पता था मेरे दिए जख्म अभी भी इतने ताज़ा हैं कि तुम मेरी छोटी सी केयर को उस दिन से कंपेयर करोगी। दीवा आर्यांश की एक छोटी सी झलक के लिए तड़प रही थी, जबकि आर्यांश ने पूरी तरह ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो दीवा के सामने नहीं जाएगा। कई बार हम गुस्से और जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे सामने वाला सच में बहुत हर्ट हो जाता है। इस बार आर्यांश के इंटेंशन सच में काफी प्योर थे। देखते हैं इनका ये छुपने छुपाने का गेम कितना चलता है। चलिए आप लोग बढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले भाग पर मिलते हैं।